फिर इसी के बाद आप देखिए कि तीसरी चीज रोंगटों का खड़ा होना, तक्षायर रो मिनहु जुदलूदुल्लसीन यक्षौना रब्बहुम, उनके रोंगटे खड़े होते हैं। कभी सोचिए कोई ऐसा मौका याद हो आपको भी जिंदगी में कि जब आप कुरान को पढ़ें या सुनें और आपके रोंगटे खड़े हो गए, खौफ से या मोहब्बत से या इस तरह की कैफियत पैदा हो चुकी हो कि जिसके नतीजे में फिर आपके साथ ये मामला हो, उस चीज़ को देख ना सकें लेकिन वो आपके अंदर ही अंदर एक जंग लगी हो। अच्छा, अब आप कहेंगे, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आपका सीना खुला हुआ है, शरह सदर है आपके पास के कसावते कल्बी है, क्या आप पहचान सकते हैं अपनी इस कैफियत को, महसूस कर सकते हैं? यदि आप सुन के दिल में आएगा ना कि मेरा मेरे लिए मेरा सीना खुला हुआ या बंद है। मैं जब ये इस जुमले को बार बार बोल रही हूँ ना तो मुझे याद आ रहा है वो जुमला जो लोग अक्सर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास जाने के बाद सुनते हैं, और वो क्या है कि जी अचानक दर्द उठा था और डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर साहब ने चेक करके बताया कि इसके तीन वॉल्व बंद हैं, कोई कहता है इसके दो वॉल्व बंद हैं और कोई कहता है फौरन ऑपरेशन करा लें वरना तो बिल्कुल आखिरी वॉल है जो बस अब ख़त्म बंद होने वाला है। कितनी घबराहट होती है ना, और फिर अगर उनका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो एक ही झटका फिर उनकी जान ले लेता है, फिर अगर हार्ट अटैक होता है तो जान चली ही जाती है, वापस नहीं रहती। बिल्कुल इसी तरह जिस बंदे का सीना बंद है ना तो वो भी उससे ज्यादा खतरे में है जितना वो शख्स जिसके दिल को बीमारी लगी हुई है। घुटन, तंगी, हर बात ही तो मुश्किल लगती है, क्या करूं इतना मुश्किल दिन, क्यों क्यों कैसे पैदा करूं, नहीं मुझसे नहीं छूटता। मैंने देखे छोटी छोटी चीजें पाल रहे होते हैं रब की नाफरमानी की, छोड़ नहीं सकते। इतनी बड़ी जात, इतनी बड़ी ताकत, क्या कुछ नहीं देता, और हम सिर्फ इतनी सी चीज, चार बाल हम उसकी मर्जी से नहीं काट सकते या छोड़ सकते। वो कहता है छोड़ दो, हम कहते हैं हमने नहीं छोड़ने। इससे भी ज्यादा घुटन सीने की होगी, यानी आप जरा गौर करें कि जो नेमतें रब ने हमें दी हैं, सर से पांव तक अगर इंसान अपने आप को एक तनकीदी नजरों से भी देख ले कितना कुछ है, और इतनी चीजें दे के वो कहता है इसमें से कुछ चीजें मुझे वापस कर दो या इसको मेरी मर्जी से रहने दो। कितने लोग हैं जो उस पर अपने आप को शरह सदर के साथ जमाते हैं। शरह सदर क्या होता है कि नेकी करके फिर खुशी भी मिले और अगर अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ी है तो उस पर तरद्दुद नहीं बल्कि खुशी भी हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम गुना सवाब समझ के गुना छोड़ तो देते हैं लेकिन फिर भी दिल में हूँ रहती है, कोई भी आता है तो उसे पूछते ज़रूर है ये कर रही थी, बड़ा मुश्किल लगता है, देखो ऐसा लगता है, अब ये फलां चीज़ खानी थी, फलां मना करता है खा लो। फिर वो ये नहीं करते कि एक मौलवी फतवा देता है तो खाना शुरू कर देते हैं और दूसरा फतवा देता है तो छोड़ देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद दूसरा दे तो खाना, ये शरह सदर वाली कैफियत नहीं है। शरह सदर एक छोटी सी चीज़ है कि जो मेरा रब चाहता है मैंने वही करना है, मैंने वैसा बनना है जैसा मेरा रब मुझसे चाहता है, फिर आप देखेंगे कि कैसे सीना खुलेगा। फिर एक और चीज जिसे शरह सदर होता है, अपनी मौत की याद, कसरत से मौत को याद करना। नबी सल्लम ने फरमाया कि हाजिमु लज्जात, लज्जतों को तोड़ने वाली को याद करो और वो क्या है, मौत। मैं कुछ नहीं हूं, मैंने मर जाना है, मैं ख़त्म हो जाऊंगी। अब आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है, हमें तो सबको पता है मर जाना है। नहीं पता, ये हमारे जहन को पता है, हमारे दिल को नहीं यकीन। किसी को ये पता हो कि मैंने मर जाना है तो बताइए ज़रा वो अपने आप को अल्लाह से बेखौफ कर सकता है, मैंने यहाँ रहना नहीं है, मुझे यहाँ कोई रहने नहीं देगा, क्या आप यहाँ अपने पाँव पर सारेंगे? आपको यकीन हो कि 1 महीने के अंदर आपका नोटिस आने वाला है और इस शहर को अपने छोड़ना है, क्या एक नई जगह खरीदेंगे, कोई नया सोफा आएगा घर में, तैयारी करके बांध बूंद के बैठे होंगे कि जिस वक्त फौरन पकड़ेंगे और चल पड़ेंगे। अगर यही तसव्वुर आ जाए ना वहां के लिए कि मैंने नहीं रहना, मुझे यहाँ किसी ने छोड़ना नहीं है, तो चलो छोड़ो आगे चलते हैं। एक सहाबी थे तो उनको किसी जगह माले गनीमत में या कहीं जगह से जंग जमीन का कुछ टुकड़े मिले, यानी कि जमीन के दो टुकड़े थे जैसे होती है लैंड, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास दो हैं, चलो लाओ एक अपने दूसरे दोस्त को दे देता हूँ। पहले तो सोचे देने वाले कैसे थे, हम कहते हैं दो हैं, कभी तीन हो जाएं तो फिर तो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, तीनों बच्चों के नाम एक एक कर दूंगी। नहीं, वो अपने एक दूसरे दोस्त को, साहबी थे वो भी, उनको कहने लगे कि ये एक जमीन का टुकड़ा तुम ले लो, मेरे पास दो हैं, एक तुम ले लो एक मैं रखता हूँ। अच्छा, देने वालों के दिल बड़े थे तो लेने वाले भी कुछ फिर छोटे दिल के नहीं थे, कहने लगे कि भाई जजाकल्ला खैर, मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं है। कहा क्यों ज़रूरत नहीं है? कहा इसलिए कि आज की रात अल्लाह के नबी सल्लम पे कैसी आयत उतरी है कि जिसने इस दुनिया में हमारी सारी कशिश ख़त्म कर दी। और वो कौन सी आयत है? सूरत अंबिया की पहली आयत, इकतरब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फी गफलत मोरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो अभी भी गफलत में मुंह मोड़े में। कहने का देखो हिसाब का वक्त करीब है, खामखा ले लूंगा, अपने नाम पड़ जाएगी, ना इस्तेमाल कर सकूंगा, तो बेहतर है तुम ही रखो। ये एहसास पैदा होगा ना तो फिर इंसान को वाकई अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी। अपनी मौत का एहसास, इस जिस्म ने गलना है, मट्टी में जाना है, पता नहीं कल क्या होगा अल्लाह को पता है, लेकिन आम तो यही आता है ना तसव्वुर में कि मट्टी में जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, हड्डियाँ गल जाएंगी, चमड़ी खाल उतर जाएगी, कितना भी इसको सजा लूँ होगा क्या, आखिर तो मट्टी में जाना है ना। फिर इंसान अल्लाह ताला की फिक्र करता है, फिर उसके साथ चलता है, फिर वो सिर्फ नमाज नमाज नहीं होती, वो उसकी अल्लाह ताला के साथ एक मुकालमा होता है। फिर वो ऐसी नमाजें नहीं पढ़ता कि जैसे हवाओं के अंदर पत्ते झूल रहे होते हैं, बल्कि उसकी कैफियत कैसी होती है, जैसे अपनी जगह पे जमा हुआ एक तना, हिलता नहीं अपनी जगह से, कुमु लिल्लाही कानितीन। फिर उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगती है, फिर उसका सीना भीगने लगता है, फिर उसके सीने से चक्की की तरह की आवाज़ें आने लगती हैं, फिर जब वो सजदे में जाता है तो उसके आंसुओं से जमीन भीगती है और वही मट्टी उसके माथे पे लग जाती है, फिर उसके कदम सूज जाते हैं रब के सामने रातों को खड़े खड़े बातें करते हुए, और उसको वक्त का एहसास ही नहीं होता। हम क्यों नहीं पढ़ सकते लंबी नमाज, कभी गौर किया? कुल हो अल्लाह से आगे क्यों नहीं जाते? तवज्जो ही नहीं है, दिल कहीं और लगाओ तो काम होता ही नहीं। अब आम जिंदगी में देखें, जब कोई काम बड़ी जल्दी में करते हैं तो आपका सही नहीं होता ना, खाना पका रहे हैं, जल्दी जल्दी पका रहे हैं, साथ कुछ और भी कर रहे हैं, इधर उधर भी भाग रहे हैं, तो आप फौरन भागा दौड़ी में कभी नहीं चूल्हे के आगे खड़े होकर अच्छे तरीके से खाना पका सकते, भूनते पकाते, बस जल्दी करो ख़त्म करो काम। लेकिन जब किसी काम में वक्त लगा के मज़े से करते हैं तो आप उसको बड़े दिल से करते हैं। जब नमाजें ऐसी बेकैफ हैं कि दिल कहीं और लगे हैं तो कुल हो अल्लाह भी मुश्किल लगती है, बल्कि वो भी भूल जाता है कि पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, एक सूरत पढ़ी थी कि दो पढ़ी थी। उनको क्यों याद नहीं रहता था इतनी लंबी नमाजें? सूरत बकरा पढ़ ली, सहाबी कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि अब ये ख़त्म करेंगे तो रुकू में जाएंगे, और नबी सल्लम ने सूरह निसा शुरू कर दी, सूरह निसा पढ़ी और कह रहे हैं मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद ज़रूर सजदे में जाएंगे, और आपने सूरह आल इमरान शुरू कर दी। एक रकत की बात है ये, ठीक है ये जमात की नमाजें नहीं थी जो लोगों के साथ, ये रातों की तन्हाई की नमाजें थी। क्यों नहीं होश रहता? कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जब रब से दोस्ती होती है तो वक्त गुजरने का एहसास किसको? जब हम अपने दोस्तों में बैठते हैं तो हमें वक्त गुजरने का एहसास होता है? हम कहते हैं अरे इतनी जल्दी 3 बज गए, आज तो वक्त का एहसास ही नहीं हुआ, आज दोस्तों की महफिल में थे तो वक्त तेज चला गया, और अगर वही कुरान की क्लास में बैठे होते तो बार बार घड़ी देखते कि वक्त ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतनी लंबी क्लास, इतना मुश्किल, इनको तो पता नहीं कोई और काम ही नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत जितनी दिल में आ जाएगी सीना खुलता जाएगा, अंदर जाएगी आपके बात, और आपका दिल करेगा कि रात दिन तो दिन, रातों को भी थोड़ा सा उससे बात कर लो। इन्ना नाशियत अल्लैली ही अशद्दु वत्अ व अक्वमु क़ीला। एक और चीज़ शरह सदर की रातों का क्या, चंद मिनट, चंद सेकंड, एक लम्हा, करवट बदलते हुए रब को याद करें, आपका सीना खुल जाएगा। दिन में आप इबादत करते हैं ना, तो वो इबादत आपको बस एक फर्ज पूरा होता है। जैसे बहुत सारे काम हो तो आप काम कर करके बस निपटाते हैं, लेकिन जब आप फारिग होके खामोशी से सुकून से बैठते हैं चाय का कप साथ लेके, फिर आप कोई काम करते हैं ना, तो आपको उसमें अब मज़ा आ रहा होता है। इसी तरह रात की घड़ियों में जब इंसान अल्लाह ताला के साथ ऐसी बातें कर लेता है ना, तो फिर उसको वाकई यकीन आता है कि अल्लाह मैं तेरे लिए रातों को भी उठ सकती हूँ। आपके अंदर एक और मोहब्बत आती है। फिर आप देखिए कि जिस चीज़ के लिए आप जितनी कुर्बानी देते हैं ना, वो चीज़ आपको उतनी प्यारी होती है। मैंने देखा है कि कोई बच्चा थोड़ा सा हैंडीकैप है या कुछ ज़्यादा तवज्जो चाहता है ना माँ की, या जैसे कुछ बच्चे बचपन में बहुत बीमार रहते हैं, कमज़ोर पैदा होते हैं, तो माएँ उनके लिए बड़ी मेहनत करती हैं, जागती हैं रातों को, उनकी मालिशें करना, उनको उठ के देखना। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि फिर उन बच्चों से उनको दूसरे बच्चों की नस्बत ज़्यादा प्यार होता है। ऐसा है क्यों? कि उसको बड़ी कुर्बानियों से लिया है, बड़ी मेहनतों से पाला है। मेरे एक दोस्त है तो उसका बेटा बहुत ही पहले वक्त से पैदा हो गया, शायद 6 माह का भी या उससे भी कुछ पहले। यानी मुझे खुद बताती है कि जब वो पैदा हुआ और जब मैंने पहली दफ़ा उसको कई कुछ दिन के बाद देखा, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गुलहरी है, गुलहरी का बच्चा। कितना सा उसका मुँह था कि जैसे इतना हाथ में आ जाए, और एक बिल्कुल कह रही कि मुट्ठी के ऊपर आ सकता था, कि मैं खुद कांप गई थी कि ये मैंने क्या पैदा किया। लेकिन वो कितनी दुआओं से लिया हुआ बच्चा था, और कितने पहले अबॉर्शन हुए, एक बेटी थी उससे पहले। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा 4-5 साल का हो गया, तो वो बच्चा ऐसे जैसे माँ के हाथों का छाला, क्योंकि उसने उसके लिए उससे पहले कितने ऑपरेशन सह चुकी थी और कितनी तकलीफें सही, कि वो कहती है कि इस बच्चे ने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। कि जब मैं हॉस्पिटल में कितने 6-7 महीने रहा वो शुरू में, तो कहती है कि वो दिन मेरे जो थे वो मैंने रब को पा लिया। तो मैंने कहा बस यही रब चाहता था। अल्लाह ताला कभी कुछ दे के आजमाता है, कभी छीन के आजमाता है। ये सारे ना हमारे इम्तिहान होते हैं। औलाद नहीं दी, क्यों? शिकवे करो, रो दो, अपने ऊपर रहम खाओ। नहीं, वो ये देखना चाहता है कि तुम उसको कितने दर्द से पुकारते हो। बच्चा नहीं है अब, जो दर्द है, जो तुम्हारी आवाज़ में तड़प है, वो देखना चाहता है। और फिर बच्चा मिल जाता है तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि अब इसको पा के मेरे पास कितना आते हो। अब तुम्हें मसरूफ कर दिया, अब रौनक दे दी तुम्हें। और अमूमन इस दूसरे इम्तिहान में हम फेल हो जाते हैं। पहले में शायद 100/100 नंबर मिल जाते हैं, कुछ नहीं होता तो मस्जिद के रब के हो जाते हैं। दीन बातें वक्त हम काम करेंगे, जज्बात भी होते हैं, खुशी खुशी करते हैं दीन का काम, और इधर अल्लाह ताला एक नेमत देता है, एक उम्मीद ही लग जाती है ना कि बच्चा होगा, तो फिर हम उस रब को कहते हैं तू पीछे और हम आगे। फिर इतनी दूर चले जाते हैं। मैं सोचती हूँ पता नहीं कल क़यामत के दिन क्या खोया और क्या पाया देखेंगे। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपसे दीन का कोई काम करवाना चाहता है, कोई अच्छा काम कराना चाहता है। आपने दुआएं बड़ी मांगी हैं, आपके दिल में तड़प बड़ी है। अब अल्लाह को पता है कि इस काम की जिम्मेदारियां कितनी हैं और इस बंदे के अंदर कमज़ोरी कितनी है। अल्लाह ताला उसको फारिग रखता है दूसरे कामों से। कर लो, कर लो। आज अगर वो बंदा वो काम करना छोड़ दे ना दीन का, तो अगले दिन हो सकता है अल्लाह ताला उसको वो औलाद और वो उस्तारी सारी नेमतें दे दे। ये हमारे हाथ में होता है। बस दफ़ा हम सोचते हैं ना कि हम नेक हो जाएंगे, नेकी का काम करेंगे तो दुआएं कबूल होनी शुरू हो जाएंगी। हमेशा ऐसा नहीं होता, बल्कि बस दफ़ा अल्लाह ताला आपको अपना कुर्ब देने के लिए फिर दुनिया से दूर रखता है। और दुनिया से दूर क्यों रखता है? ताकि फिर आप अल्लाह के करीब हो जाएं। फिर जब आप अल्लाह के करीब होते हैं तो उसे नतीजा क्या निकलता है कि फिर आप एक और आजमाइश में आ जाते हैं कि अब इसके बाद कहाँ आते हो। अमूमन एक आम सी बात हमारे कल्चर में थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड बदल रहे हैं, लोग जवानी में भी दीन की तरफ आ रहे हैं, खुशहालियों में भी आ रहे हैं, लेकिन आज से कुछ 50-60 साल पहले अमूमन दीन का काम करने वाले के लिए जहन में तसव्वुर क्या आता था? बुजुर्ग ख़वातीन, मुतल्लिका, बेवा जिनके बच्चे नहीं, अकेली हैं, कुछ काम नहीं, चलो पकड़ो इनको, ये दीन का काम करें। किसी ने कहा कि अक्सर जो उस्तानियाँ होती हैं वो मुतलका ही होती हैं। किसी ने कमेंट दिया, तो मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो मैं लरस के रह गई। मैंने कहा देखो, इन इनके सोचने का अंदाज कितना फर्क है। ठीक है, एक औरत अपने घर में होती है, बच्चे भी हैं, शौहर भी है, अल्लाह ने नेमतें भी दी, ठीक है, ज़रूरत तो थी कि वो इसमें अल्लाह ताला को उतना ही वक्त देती, लेकिन वो नहीं दे पाती। लेकिन वो चाहती कुछ अच्छा करना थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां और ये सब कम उसके उसको आने नहीं देती। अल्लाह ताला वो चीज़ ले लेता है, वो नेमत होती है चीज़ का जाना। मत सोचिए कि हमेशा चीज़ों का छीनना नुकसान होता है। मैं कहती हूँ बड़े बड़े नुकसान को पाने के बाद जो मिलता है ना, वो सारी तलाफी कर देता है। रब मिल जाए अगर, नुकसान हुआ रब मिल गया। बेटे की अचानक मौत हुई, माँ का दिल दीन की तरफ आ गया। अचानक बेवगी हो गई, जवानी में बेवा हो गई, वो औरत दीन पे आ गई। बच्चे नहीं हुए, सारी जिंदगी मांगते रहे, अल्लाह ताला ने दीन दे दिया, वक्त अल्लाह को देने लग गए, क्या खोया, कौन नुकसान में रहा। अमूमन हम क्या सोचते हैं कि जिनके पास दुनिया की नेमतें ये सब हैं वो बड़े फायदे में। यानी मिसाल है, आप में से किसी की औलाद हो और अल्लाह ताला सबको दुनिया में भी औलाद की खुशियां दे और आगे भी आखिरत में भी उनको आंखों की ठंडक बनाए, लेकिन अमूमन देखा गया कि अगर एक बच्ची अपने घर में बड़ी सुखी हो, बच्चे भी हैं, शौहर भी है, सब कुछ है, बस दुनियादारी चल रही है, और दूसरी बच्ची जो है वो अगर थोड़ी किसी आजमाइश में आ जाए, मंगनी छूट जाए उसकी, या शादी हुई तलाक हो जाए, या कुछ और अनबन हो, अमूमन माँ बाप किस नज़र से देखते हैं। पहली को कहेंगे कि ये बड़ी खुशकिस्मत है, इसका तो हमें कोई गम नहीं। चाहे हो सकता है वो बेचारी 5 वक्त नमाज भी ना पूरी पढ़ पाती हो सकता है उसके पास वो सारी लिबास और हिजाब की भी पाबंदियां नहीं है, और वो दूसरी जिसकी तरफ से गमजदा थे, हो सकता है अल्लाह उसको अपने दीन के काम पे लगा ले। तो माँ बाप उठते बैठते क्या कहते हैं, अपनी जिंदगी में इसकी भी खुशियां देख लें। हालांकि क्या ये खुशियां नहीं है, एक बच्चे का पैदा होना, आप बताइए क्या कुरान की एक सूरत पूरी पढ़ लेने से ज्यादा बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला दे सबको, नेमते भी दे, रखे भी सलामत, लेकिन सिर्फ नुक्ते नजर का फर्क। जब सोच बदल जाती है ना, तो फिर इंसान को अल्लाह के हर फैसले में खुशी रहती है। तो शरे सदर का एक और जरिया क्या है, तकदीर पे राजी होना, राजी बरजा, जो तूने मुझे दिया मैं उस पर राजी हूं, अब तू बता मैं क्या करूं। देखिए कि जो दुनिया में अल्लाह ताला से पूछता है ना कि अल्लाह ताला तू बता मैं क्या करूं, तू बता मैं कैसी बनूं, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि अब तू बता तुझे क्या चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह ताला किसी का हक नहीं रखता। दुनिया में हमने रब की रजा पूछी, आखरत में उसने हमारी पूछ ली। आज हम अपनी चाहते हैं तो कल फिर वो अपनी मनवाएगा। दो बातें इकट्ठी नहीं हो सकती कि दुनिया भी मन चाही और आखरत भी मन चाही। और ये भी दो कमी इकट्ठी होती हैं कि दुनिया भी रब चाही और आखरत भी रब चाही। अल्लाह ताला ने कुछ अपने पास रखा है, कुछ हमें दिया है। हमें सिर्फ ये कह दिया कि अपना हिसाब कर लो। आखिरी बात करूंगी इस पे, सिर्फ अब आपको पॉइंट ही दे सकती हूँ, वक्त खत्म हो चुका है हमारे पास। अलामतें क्या हैं, कैसे पता चलता है कि सीना खुल चुका है? मुझे अपना जायजा लेना है कि मेरा सीना खुला हुआ है कि नहीं, क्या अलामतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मिलता है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से वो हम तक हदीस पहुंचती है। आपने फरमाया कि चार बातें ऐसी हैं कि जिसमें वो हों बदबख्ती की अलामत है, यानी अरबातु मिन शिकावा, चार बातें बदबख्ती की हैं। बदबख्ती यहाँ आप लिख लें कसावत कल्ब, दिल की सख्ती, यानी जो शरह सदर का ऑपोजिट है। वो कौन कौन सी हैं? चार बातें किसी में अगर देख लो तो समझ जाओ कि उसका दिल बंद है, इलाज की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है इसको। कौन सी? तूलुल अमल, लंबी आरजुएं, ये करेंगे, वो बनाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये होगा, लंबी लंबी प्लानिंग्स करके बैठा हुआ इस दुनिया की, और पता ये नहीं कि शाम भी होनी है कि नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारी जिंदगी में सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करो, और शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करो, और अपना शुमार मुर्दों में करो। ये एक अलग हदीस है। तो तूलुल अमल, दूसरी चीज हिर्सु अल दुनिया, दुनिया की हिरस, सब कुछ यहीं मिल जाए। तीसरी चीज आपने बताई आंखों का खुश्क होना, कुरान सुन के आंखों में आंसू ना आए, यह भी बदबख्ती की अलामत है। और चौथी चीज कराहियतुल मौत, मौत से कराहत आना, अपनी मौत का सुन के ब्लड प्रेशर हाई होने लगे, मुझे नहीं मरना अभी। ये बड़ा मैंने देखा है कि आसान सा टेस्ट है, हम में से कोई भी फ्री कर सकता है। अल्लाह से मोहब्बत है कि नहीं, आगे जाके क्या होना है, अपनी मौत का सोच ले। अगर लज्जत मिले ना हल्के हल्के अंदेशों के साथ, जैसे शादी होती है तो खुशी भी होती है लेकिन अंदेशे भी होते हैं ना, खुशी ज़्यादा होती है, अंदेशे दब जाते हैं ना आम हालात में, वो तो खैर है। लेकिन अगर तसव्वुर में आए ऑपरेशन थिएटर में जाने का और लाइलाज मर्ज है, अगर आपको आखिरत का सोचते हैं तो खुशी भी दिल में उभरती है ना, अच्छा है ये भी देखेंगे, नबी सल्लम को देखूंगी, अबू बकर सिद्दीक होंगे वहाँ, हज़रत इब्राहिम को देखूंगी, अल्लाह ताला को देखूंगी, मैं जन्नत में देखूँ, अच्छा ये सब कुछ जो पढ़ती हूँ वहाँ वाकई मिलेगा, अच्छा सब मिलेंगे, अपने सारे पिछले मिल जाएंगे, अबू को भी देखूंगी, नाना को भी देखूंगी। अगर ऐसी चाहते हैं ना, और साथ ही अंदेशा जी हो कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, खौफ आए, लेकिन ज्यादा अच्छी बातें याद आए, तो इंशाअल्लाह ताला खैर का मामला है, पॉजिटिव है रिजल्ट। और अगर बात इससे बरक्स हो, सोच के खौफ आने लगे, और जिसको कहते हैं कि असाब खिंचने लगे, तो फिर बड़ी जरूरत है इस बात की कि अल्लाह ताला से दुनिया में ये दुआ की जाए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल दे, इतना खोल दे हर बात सुन के उसको अंदर डालते जाए। अफमन शराह अल्लाह सदरहू लिल्इस्लाम, अल्लाह ताला हमें इनमें कर दे, ये मेरी बात हो, इसमें अल्लाह ताला मन की जगह मेरा नाम लिख ले, सीना खुल गया सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। मोहब्बत रास्तों को आसान कर देती है, वरना तो निरी घुटन है, चीखते हैं छोटी छोटी बातों पे। ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला और मुश्किल कर देता है, जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं ना तो सांस फूलने लगता है, फिर जब एक हुक्म पे अमल नहीं करते ना तो हर हुक्म मुश्किल लगता है, फिर छोटे छोटे कदम भी नहीं लिए जाते। लेकिन जो लोग खुले दिल से चलते हैं, जो खुले दिल से चीज़ों को कबूल करते हैं, फिर किसी किस्म का शक नहीं रहता, शुभा नहीं रहता, फिर वो इस दुनिया में से एक पत्थर भी हटाते हैं अपने रास्ते से तो उनको पता है कि हमने इसको जन्नत के अंदर डाल दिया। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सीनों को खोल दे। बड़े शऊर के साथ दुआ मांगिए, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। और एक दफ़ा तिलावत सुनिए पहले इन आयात की।
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن
ہم سب اپنا جائزہ لیں گے ہم سب اپنا جائزہ لیں گے کہ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ چار میں سے ایک آپشن آپ چوز کریں گے ہاں یقین ہے یقین نہیں ہے کسی حد تک بہت حد تک کس بات میں آئیے اب ان کو دیکھتے ہیں پہلی بات قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے دوسرا پوائنٹ ہے قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی میں چل رہے ہیں تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت بھری کتاب سے اور زیادہ سخت ہو گئے قرآن مجید کی نصیحت سے فائدہ نہ اٹھانے والے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے قرآن مجید کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں قرآن مجید میں مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں کیا قرآن مجید سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا قرآن مجید سن کر میرا جسم اور میرا دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس سے وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں تاکہ وہ ہوش میں آئیں قرآن پاک میں کوئی ٹیڑھ نہیں قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا کہ لوگ اسے پڑھ کر سمجھ کر برے انجام سے بچیں قرآن مجید سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں یہ سارے پوائنٹ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے کریں گے تو آپ تو سب کو ہاں کریں گے لیکن اصل فائدہ کب ہوگا اپنے اندر جھانک کے چیک کرنا ہے اور اصل میں یہ ہمارا محاسبے کا وقت ہوتا ہے صحابہ کرام میں اور ہمارے اندر یہی فرق تھا کہ وہ کسی بھی بات کو سن کے فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے یہ قبولیت کب آتی ہے جب دل کھل جائے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بھی دل ہدایت کے لیے کھل جائیں آمین तो इसकी रोशनी में हमने अपना जायजा लेना है और एक एक चीज को बैठ के देखना है कि क्या हम कर सकते हैं। और आज के पूरे सबक को सुनने के बाद जो हमारे अपने करने के काम है, एक तो वही बात है कि इस कुरान से ताल्लुक को छोड़ना है, क्योंकि ये एक रस्सी है। अल्लाह ताला ने भी इसको कहा ना, हबलुल्लाहिल मतीन, रस्सी का एक सिरा एक के हाथ में हो तो दूसरा दूसरे के हो, कभी ना कभी बंदा पहुंच ही जाता है। कोई जल्दी चढ़ता है, कोई देर से चढ़ता है, लेकिन पहुंच जाएंगे। जब इंशाल्लाह बाद में हम कभी इसको तफसीर की क्लास में करेंगे, तो इस पूरे रुकू का थीम क्या है, कुरान से जुड़े रहो। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरे लिए, क्योंकि हम कुरान पूरा करके सोचते हैं बस अब जरूरत नहीं रही, कुरान से जुड़े रहो, वरना ऐसे ख्वाहिशों के जंगल में भटकेंगे पता भी नहीं चलेगा। एक दफा रास्ता लॉस्ट करते हैं ना, तो एक एक मोड़ में मुड़ते हैं गलत, कहाँ जाके चलते हैं। नहीं, आज पहले आपने ख़त्म कर ली किताब, आप सबको मुबारक हो और अल्लाह ताला इल्म नाफ़े करे आपके लिए। नहीं, दूसरी वर्कबुक शुरू करेंगे आप लोग, वो अपने पास रखेंगे पढ़ते वक्त, और वो है सूरह यासीन, यासीन वल कुरान अल हकीम। इंशाल्लाह ताला हम उसके दूसरे रुकू, पहला तो हम कर चुके हैं इस रुकू बुक में, लेकिन दूसरा रुकू करके और सरेंडर कर दो। मैंने देखा है कि जितना कहेंगे ना, बस अल्लाह मैं थक गई, ये हूँ मैं, जो तूने दिया राजी, जो नहीं दिया उस पे राजी। लोग कहते हैं ना कि दोबारा सुनते हैं तो नया मजा आता है, हर दफा पढ़ाने का भी अपना ही मजा है। सख्त सजा सुनने के बावजूद भी लोग देखिए कि इकरार के लिए आते थे, इसके बरक्स आज देखिए कि कितनी छूट दी हुई है लोगों को, कोई पकड़ धकड़ का भी डर नहीं, इसके बावजूद भी ये गुनाह कितनी कसरत से है। तो जब अल्लाह ताला के दीन को दुनिया में लागू करते हैं तो इंशाल्लाह असल खैर उससे आती है। अब मैं चाहूंगी कि हम सब दो मिनट तक खामोशी से अपने मामलात पे गौर करें, क्योंकि ये वक्त तदब्बुर का है, और कुछ बातें बोल के कही जाती हैं, कुछ खामोशी से कही जाती हैं। जब हम बहुत बोलते हैं या सुनते हैं ना, तो हम अपने अंदर की आवाज़ों को नहीं सुन पाते। एक बात बहुत डिस्टर्ब कर रही है हमें कि कुरान सुनकर आंसू नहीं आते, बट सीखने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, कोशिश करें। आप देखिए, रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बनाएं, कभी खास पे अकेले में जब बैठे हों और इस तरह से कुरान की आयतें अच्छी आपको लगें या जिनका समझ आ रहा है, तो ऐसा फेस बना लें कि जिसको देख के अल्लाह ताला को प्यार आए। और ये तब आता है रोना जब दिल में बात उतरती है, तो अगर कोशिश करते रहते नहीं आता रोना तो भी ठीक हो जाएगा। ये कहती हैं कि मैं आई फील नूर इन माई हार्ट, अल्लाह नोज बेटर, बट एट द सेम टाइम आई लूज टेम्पर अलॉट, मीनिंग आई गेट एंग्री वीकली ऑन किड्स हस्बैंड ETC, व्हाट शुड आई डू। वीकली जाते हैं तो फिर भी ठीक है, बाज़ लोगों को तो डेली गुस्सा आता है बच्चों पे। देखें कि आप हर चीज अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाएं, जैसे आज भी आपको पॉइंट्स दिए हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। जो रज़ा होती है ना अल्लाह की, राज़ी होना, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप कूल हो जाते हैं ना। तो इसके लिए ये है कि आप ज़ाहिर है कि नूर आ रहा है, इंशाल्लाह मंथली सफ़र होता है रास्ते का, हर दिन आगे से अच्छा हो रहा है, तो आप बिल्कुल अपने आप को अच्छा महसूस करें और ऐसा ऐसा टेम्परामेंट भी ठीक हो जाएगा। मतलब ज़ाहरी बात है कि 100% तो कोई भी बंदा आपकी मर्ज़ी का नहीं हो सकता ना। शौहर की मिसाल ले लें, कितने भी अच्छे क्यों हो, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि 100% आप लोगों का एक मिजाज बन गया। तो बिल्कुल इसी तरह से आप यानी इस चीज़ को महसूस करते जाएंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद बहुत फिर आसानी कर देगा। मैंने देखा हर चीज़ का इलाज सब्र है, सब्र रखें, बात नहीं करें, खामोशी रखें। बहुत बुरी बात भी लगे तो सब्र करें, बहुत अच्छी भी लगे तो भी सब्र करें। ये दोनों ही चीज़ें होती हैं जो अमूमन टेम्परामेंट लूज़ करवाती हैं हमारा। इन्होंने कही कि खामोशी में तहफ़ है, और इसी को तो नबी सल्लम ने फरमाया ना कि नजा मन समत, वो निजात पा गया जो खामोश रहा। बहुत बड़े बड़े तूफ़ानों को आप टाल सकते हैं अपनी खामोशी से। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून, वसलामुल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।